तब ऐसी लीला के रचने से वैष्णव आदि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आ फंसे और बहुत से व्यास आदि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धर आए व भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम व लक्ष्मी, नारायण और भैरव हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ला मंदिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देवें। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है। तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ व जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखला दूं। तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंचकर देखा, आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिरकर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है, अब आप ले चलिए और हम मंदिर बनवा देवेंगे, उसमें इस देवता की स्थापन कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन प्रसन्न करके मनोवांछित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसके देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां स्थापन की।
परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी ना करे मूर्ति के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है।
जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है, क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से वे मनुष्यकृत मूर्तियां बनी हैं, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण ना होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहाँ मुझे कोई नहीं देखता, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता, इत्यादि अनेक दोष पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिए, जो पाषाण आदि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है, वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक न जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा, किंतु मन में कुछ चेष्टा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है जो मैं मन, वचन और कर्म से कुछ भी बुरा काम करूंगा तो इस अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड पाए कदापि ना बचूंगा और नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता, जैसे कि मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु जीभ से चाखने ही से मीठा व कड़वापन जाना जाता है।
क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है? जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महत्व में लिखा है।
नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है।
हमारी रीति कैसी है?
यह वेद विरुद्ध है।
भला अब आप हमको वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बताएं।
नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए, जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्यायुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी ना करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है।
हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्णादि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात झूठी है?
हाँ हाँ, झूठी है, क्योंकि ओम अजाए कपात ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 35 मंत्र 13 ओम अकायम यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो वंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र दर्शन करने की बात कहना है।
जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है। पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं? देखो, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृणमये, भावे हि विद्यते देवस्तस्मात् भावो हि कारणम्। गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय 38 श्लोक 13। परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृतिका से बनाए पदार्थों में है, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भाव करें वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है।
जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र ना करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना। देखो यह कितना बड़ा अपमान है। वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते हो? चंदन घिस के क्यों लगाते हो? धूप को जला के क्यों देते हो? घंटा, घड़ियाल, झांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते हो? शिर में है क्यों शिर नमाते हो? अन्न जल आदि में है क्यों नैवेद्य धरते हो? जल में है स्नान क्यों कराते हो? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो या व्याप्य की। जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चंदन पुष्प आदि क्यों चढ़ाते हो? और जो व्यापक की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? हम पाषाण आदि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते? अब कहिए, भाव सच्चा है वा झूठा? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा और तुम मृतिका में स्वर्ण, रजत आदि, पाषाण में हीरा, पन्ना आदि, समुद्र फैन में मोती, जल में घृत, दुग्ध, दधि आदि, और धूल में मैदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसा ही क्यों नहीं बनाते हो? तुम लोग दुख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता है? और सुख की भावना सदैव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता? मरने की भावना नहीं करते, क्यों मर जाते हो? इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं, क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है, क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है। इसलिए तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो।
अजी, जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आते, और आवाहन करने से झट आ जाते हैं और विसर्जन करने से चले जाते हैं।
जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? और विसर्जन करने से चला जाता है तो वह कहां से आता है और कहां जाता है? सुनो भाई, पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते? और शत्रु के शरीर से जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? सुनो भाई, भोले भाले लोगों, ये पोप जी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आह्वान विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है।
प्राणा इहा गच्छन्तु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा, आत्मेहा गच्छतु सुखम चिरम तिष्ठतु स्वाहा, इंद्रिया अणि गाहछन्तु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा, इत्यादि वेद मंत्र हैं, क्यों कहते हो नहीं है?
अरे भाई, बुद्धि को थोड़ी सी तो अपनी काम में लाओ। ये सब कपोल कल्पित वाम मार्गियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रंथों की पोप रचित पंक्तियां हैं, वेद वचन नहीं।
क्या तंत्र झूठा है?
हाँ, सर्वथा झूठा है। जैसे आवाहन प्राण प्रतिष्ठा आदि पाषाण आदि मूर्ति विषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं है, वैसे स्नानम समर्पयामि इत्यादि वचन भी नहीं। अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाणादि मूर्ति रचयित्वा मंदिरेषु संस्थाप्य गंधादि भिरचयेत्। अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षत आदि से पूजें, ऐसा लेश मात्र भी नहीं है।
जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है, और जो खंडन है तो प्राप्तौ सत्याम निषेधः। मूर्ति के होने ही से खंडन संगत हो सकता है।
विधि तो नहीं, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है, क्या अपूर्व विधि नहीं होता? सुनो, ओम अंधंतमः प्राविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूयाइवाते तमो याहु संभृत्यां रताः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9। जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में से गिरके महाक्लेश भोगते हैं। ओम नतस्य प्रतिमास्ति। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र संख्या 3। जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है।
यद्वाचानाभ्युदितं येन वाग्भ्युदते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदं उपासते।
और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं है।
यन्मनसाना मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते।
जो मन से यथा करके मन में नहीं आता, जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को जान और उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान पर मत कर।
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते।
जो आँख से नहीं दिख पड़ता और जिससे सब आँख देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर, और जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर।
यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते।
जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर, और उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान पर मत कर।
यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते।
जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी को ब्रह्म मान, उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर। इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है। प्राप्त का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना, अप्राप्त का जैसे हे पुत्र तू चोरी भी मत करना, कुएं में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है, इसलिए पाषाण आदि मूर्ति पूजा अत्यंत निषिद्ध है।
मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है।
कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विहित जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषेध जो अकर्तव्यता से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषेध हैं। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका ना करना अधर्म है, वैसे ही निषेध कर्म का करना अधर्म और ना करना धर्म है। जब वेदों से निषेध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं?
देखो वेद अनादि हैं। उस समय मूर्ति का क्या काम था, क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीत तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है। जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके, और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं। इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा है, क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाएं। पहली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहें तो नहीं जा सकते, इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा और अंतःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली या गोला आदि मारता मारता पश्चात सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम नहीं।
जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध आचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं, उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। देखो मनुस्मृति के अध्याय दूसरे के 11वां श्लोक। नास्तिको वेद निंदकः। मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग विरुद्ध आचरण करता है वह नास्तिक कहता है। यावदा बाह्यः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्यातमो निष्ठाहिताः स्मृताः। जो ग्रंथ वेद बाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाए संसार को दुख सागर में डुबोने वाले हैं, वे सब निष्फल असत्य अंधकार रूप इस लोक और परलोक में दुखदायक हैं। उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्तान्यर्वा कालेत कथया निष्फलान्यानृतानि च। जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनको मानना निष्फल और झूठा है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत का मत है कि वेद विरुद्ध को न मानना किंतु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है, क्यों वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक हैं। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वे वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं कि जो वेद विरुद्ध चलते हैं उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, किंतु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? नहीं, नहीं। मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है, पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है। हाँ, छोटे धार्मिक विद्वान से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्विद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। जैसी ऊपर घर में जाने की निश्रेणी होती है किंतु मूर्ति पूजा करते करते जानी तो कोई ना हुआ, प्रत्युत सब मूर्ति पूजक अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ खोके बहुत से मर गए, और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से विमुख होकर निरर्थक नष्ट हो जाएंगे। मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या है, इसको बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है। और मूर्ति गुड़ियों के खेलवत नहीं किंतु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सुनिए, जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएगा।
साकार में मन स्थिर होता है और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए।
साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। निरावयव होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता, किंतु जगत में मनुष्य स्त्री पुत्र धन मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, किंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में ना लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए मंदिर में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बखेड़ा और रोग आदि उत्पन्न होते हैं। चौथा, उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है। पांचवा, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का एक मत्य नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट पड़ा के देश का नाश करते हैं। छठा, उसी भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य स्वातंत्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के अधीन होता है और आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख पाते हैं। सातवां, जब कोई कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान देता है, वैसे ही परमेश्वर की उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे। आठवां, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित हो ठगों से ठगाते रहते हैं। नौवां, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वेश्या पर स्त्री गमन मद्य मांसाहार लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। दसवां, माता पिता आदि माननीयों को अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं। ग्यारहवां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता व चोर ले जाता है तब हाहाकार करके रोते हैं। बारहवां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। तेरवां, स्वामिक सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चौदहवां, जड़ का ध्यान करने वालों का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि देह का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य होता है। पंद्रवां, परमेश्वर ने सुगंधि युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं, उनको पुजारी जी तोड़ ताड़ कर ना जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता है और पूर्ण सुगंधि के समय तक उसका सुगंध होता है, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्प आदि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्प आदि सुगंधयुक्त पदार्थ रचे हैं। 16. पत्थर पर चढ़े पुष्प चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृतिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकार सड़के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्त्रों जीव उसमें पड़ते हैं उसी में मरते और सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं, इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे।
किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी करानी नहीं। और जो अपने आर्यावर्त में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परंपरा से चला आता है, पंचायतन पूजा जो कि शिव विष्णु अंबिका गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, यह पंचायतन पूजा है या नहीं?
किसी प्रकार की मूर्ति पूजा ना करना, किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है, परंतु विद्याहीन मूढ़ों ने उसकी उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया है। जो आजकल शिव आदि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खंडन तो अभी कर चुके हैं, पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देव पूजा और मूर्ति पूजा है वह सुनो। यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र संख्या 15। ॐ मानावधिः पितरं मोता मातरम्। प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अर्थात संतानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात ताड़ना कभी ना करना। दूसरा पिता सत्कर्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करनी। ओम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणा मिच्छते। तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी। ओम अतिथिर्गृहानुपागच्छेत्। चौथा अतिथि जो विद्वान धार्मिक निष्कपटी सबकी उन्नति चाहने वाला जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है उसकी सेवा करें। ओम अचेता प्राचता प्रिया मेधासो अर्चता। पांचवा स्त्री के लिए पति पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है। ओम त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ये पांच मूर्तिमान देव जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति पालन सत्य शिक्षा विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है, ये ही परमेश्वर की प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा ना करके जो पाषाण आदि मूर्ति पूजते हैं वे अतीव देव विरोधी हैं।
माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें, तब तो कोई दोष नहीं।
पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता आदि मूर्तिमान की सेवा करने ही में कल्याण है। बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाण आदि में शिर मारना स्वीकार किया। इसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने नैवेद्य व भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा ले लेंगे तो हमारे मुख और हाथ में कुछ ना पड़ेगा। इससे पाषाण आदि की मूर्ति बना उसके आगे नैवेद्य धर घंटानाद, टमटन पूपू और शंखा बजा, कोलाहल कर अंगूठा दिखला अर्थात त्वमंगुष्ठम घृणाणा भोजनम पदार्थ वाहम करिष्यामि। जैसे कोई किसी को छले व चढ़ावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखलावे, उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, वैसे ही लीला इन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक झलक मूर्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठनके, विचारे निर्बुद्धि अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाण प्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता, निर्वाह कराता।
जैसे स्त्री की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है, वैसे वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति की प्राप्ति क्यों न होगी?
नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है। विवेक के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना शांति नहीं होती। और जो कुछ होता है सो उनके संग उपदेश और उनके इतिहास आदि के देखने से होता है, क्योंकि जिसका गुण व दोष न जान के उसकी मूर्ति मात्र देखने से प्रीति नहीं होती। प्रीति होने का कारण गुण जान है। ऐसे मूर्ति पूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यवर्त में निकम्मे पुजारी, भिक्षुक, आलसी, पुरुषार्थ रहित करोड़ों मनुष्य हुए हैं। सब संसार में मूढ़ता उन्होंने ही फैलाई है। झूठ छल भी बहुत सा फैला है।
काशी में औरंगजेब बादशाह को लाट भैरव आदि ने बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए थे। जब मुसलमान उनको तोड़ने गए और उन्होंने जब उन पर तोप गोले आदि मारे, तब बड़े बड़े भमरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया।
यह पाषाण का चमत्कार नहीं, किंतु वहाँ भमरे के छत्ते लगे रहे होंगे। उनका स्वभाव ही क्रूर है। जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने दौड़ते हैं। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पुजारी जी की लीला थी।
देखो, महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिए कूप में और वेणी माधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे, क्या यह भी चमत्कार नहीं है?
भला जिसके कोटपाल, काल भैरव, लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों ना हटाए? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया, तो मुसलमानों को भस्म क्यों ना किया? इससे यह सिद्ध होता है कि बिचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते। जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने फोड़ते हुए काशी के पास आए, तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाल और वेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। जब काशी में काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं आते, प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो मलेच्छों के दूत क्यों ना डराएं और अपने राज के मंदिरों को क्यों नाश होने दिया? यह सब पोप माया है।
गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध के पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकालकर पिंड लेते हैं, क्या यह बात भी झूठी है?
सर्वथा झूठ। जो वहां पिंड देने का वही प्रभाव है, तो जिन पंडों को पितरों के सुख के लिए लाखों रुपए देते हैं, उनका वह गयावाल वैश्यागमन आदि पाप में करते हैं, वह पाप क्यों नहीं छूटता और हाथ निकलता आजकल कहीं नहीं दिखता बिना पंडों के हाथों के? यह कभी किसी धूर्त ने पृथ्वी में गुफा खोदकर उसमें एक मनुष्य बिठा दिया होगा, पश्चात उसके मुख पर कुछ बिछा पिंड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा, किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं। वैसे ही बैजनाथ को रावण लाया था, यह भी मिथ्या बात है।
देखो, कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है?
कुछ भी नहीं, वे अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते। वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूर्ति पूजा रूप गड्ढे में फंसकर दुख पाते हैं।
भला यह तो जाने दो, परंतु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर ऊपर 7 अंडे धरने से ऊपर ऊपर के पहले पहले पकते हैं, और जो कोई वहां जगन्नाथ की प्रसादी न खावे तो कुष्ठी हो जाता है, और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है। इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय राजा एक पंडा एक बढ़ई मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे।
जिसने 12 वर्ष पर्यंत जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझसे मिला था। मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था, उसने ये सब बातें झूठ बतलाई। किंतु विचार से निश्चय यह है, जब क्लेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चंदन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं, वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है। उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं। जब रसोई बनती है तब कपाट बंद करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को ना जाने ना देखने देते हैं। भूमि पर चारों ओर 6 और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनाते हैं। उन हंडों के नीचे घी मट्ठी और राख लगाकर 6 चूल्हों पर चावल पका उनके तले मांझकर उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल 6 चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बांधकर दर्शन करने वालों को जो कि धनाढ्य हों बुला के दिखलाते हैं। ऊपर ऊपर के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हंडों के लिए रख दो। आंख के अंधे गांठ के पूरे रुपए अशर्फी धरते और कोई कोई मासिक भी बांध लेते हैं। शूद्र नीच लोग मंदिर में नैवेद्य लाते हैं। जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग झूठा कर देते हैं। पश्चात जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उसके घर पहुंचाते हैं, और दीन गृहस्थ और साधु संतों को लेके शूद्र और अंतज्य पर्यंत एक पंक्ति में बैठ झूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हें पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं। महा अनाचार है, और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर झूठा ना खाके अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं। कुछ भी कुष्ठ आदि रोग नहीं होते, और उस जगन्नाथपुरी में बहुत से कुष्ठी हैं। नित्य प्रति झूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता, और यह जगन्नाथ में वाम मार्गियों ने भैरवी चक्र बनाया है, क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलदेव की बहन लगती है। उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है। जो भैरवी चक्र ना होता तो यह बात कभी ना होती, और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है। जब इनको सुधी घुमाते हैं घूमती है, रथ चलता है। जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उल्टी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है। पुजारी लोग पुकारते हैं, दान देओ पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावें, अपना धर्म रहे। जब तक भेंट आती है तब तक ऐसे ही पुकारते रहते हैं। जब आ चुकती है तब एक व्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि हे जगन्नाथ स्वामिन, आप कृपा करके रथ को चलाइए, हमारा धर्म रखो, इत्यादि बोल के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी समय कील को सुधा घुमा देते हैं और जय जय शब्द बोल सहस्त्रों मनुष्य रस्सा खींचते हैं।
रथ चलता है।
जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है। उन मूर्तियों के आगे पर्दे खींचकर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते हैं। पंडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं। जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा झट मूर्ति आड़ में आ जाती है। तब सब पंडे पुजारी पुकारते हैं, तुम भेंट धरो, तुम्हारे पाप छूट जाएंगे, तब दर्शन होगा, शीघ्र करो। वे बिचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लुटे जाते हैं और झट पर्दा दूसरा खींच लेते हैं, तभी दर्शन होता है। तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाकर तिरस्कृत हो चले आते हैं। इंद्रदमन अब तक कलकत्ते में है। वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया था, इसलिए कि आर्यवर्त देश के भोजन का बखेड़ा इसी रीति से छुड़ावे। परंतु वे मूर्ख कब तक छोड़ते हैं। देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मंदिर बनवाया। राजा, पंडा और बड़ई उस समय नहीं मरते, परंतु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं। छोटों को दुख देते होंगे। उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं। मूर्ति का हृदय पोला रखा है, उसमें सोने के संपुट में एक सालग्राम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धोकर चरणामृत बनाते हैं। उस पर रात्रि की शयन आरती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा, उसको धोके उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गए होंगे। मरे तो इस प्रकार और भोजन भट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीन भक्तों को भी साथ ले गए। ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिए बहुत सी हुआ करती हैं।
जो रामेश्वरम में गंगोत्री के जल चढ़ाते समय लिंग बढ़ जाता है, क्या यह बात भी झूठी है?
झूठी, क्योंकि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा रहता है। दीपक रात दिन जला करते हैं। जब जल की धारा छोड़ते हैं तब जल में बिजली के समान दीपक का प्रतिबिंब झलकता है और कुछ भी नहीं, न पाषाण घटे न बड़े, जितना का उतना रहता है। ऐसी लीला करके बेचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं।
रामेश्वरम को रामचंद्र ने स्थापित किया है। जो मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होती तो रामचंद्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते?
रामचंद्र के समय में उस लिंग व मंदिर का नाम चिन्ह भी ना था, किंतु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया। जब रामचंद्र सीता जी को ले हनुमान आदि के साथ लंका से चले, आकाश मार्ग में विमान पर बैठे अयोध्या को आते थे, तब सीता जी से कहा है कि
अत्र पूर्वा महादेव प्रसादमकरोत् विभुः सेतु बंध इति विख्यातम्।
वाल्मीकि रामायण लंका कांड। हे सीते, तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चतुर्मास किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा है, उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई और देखो यह सेतु हमने बांधकर लंका में आके उस रावण को मार तुझको ले आए। इसके सिवाय यहाँ वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।
रंग है कालिया कांत को जिसने हुक्का पिलाया संत को। दक्षिण में एक कालिया कांत की मूर्ति है, वह अब तक हुक्का पिया करती है। जो मूर्ति पूजा झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाए।
झूठी, यह सब पोप लीला है, क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा, उसका छिद्र पृष्ठ में से निकाल के भित्ति के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा। जब पुजारी हुक्का भरवाकर पैंचवा लगा मुख में नली जमा के पर्दे डालकर निकल आता होगा, तभी पीछे वाला आदमी मुख से वायु को खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़गड़ बोलता होगा, दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा। जब पीछे फूंके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों में से धुआं निकलता होगा। उस समय बहुत से मूढ़ों को धन आदि पदार्थों से लूटकर धन रहित करते रहे होंगे।
देखो, डाकोर जी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई, एक सवारती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई, क्या यह भी चमत्कार नहीं?
नहीं, वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा और सवारत्ती के बराबर मूर्ति की तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप मारा होगा।
देखो, सोमनाथ जी पृथ्वी के ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था, क्या यह भी मिथ्या की बात है?
हाँ, मिथ्या है। सुनो, ऊपर नीचे चुंबक पाषाण लगा रखे थे, उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जब महमूद गजनवी आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मंदिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज 10,000 फौज से भाग गई। जो पोप पुजारी पूजा पुरश्चरण स्तुति प्रार्थना करते थे कि हे महादेव, इस मलेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर, और वे अपने चेले राजाओं को समझाते थे कि आप निश्चिंत रहिए, महादेव जी भैरव तथा वीरभद्र जी को भेज देंगे, वे सब मलेच्छों को मार डालेंगे व अंधा कर देंगे, अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है, हनुमान दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे। वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे। नहीं, ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने 8वां चंद्रमा बतलाया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे। जब मलेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे। कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गए। पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़कर कहा कि 3 करोड़ रुपया ले लो, मंदिर और मूर्ति मत तोड़ो। अर्थात मुसलमानों ने कहा कि हम बुत प्रस्त नहीं किंतु बुत शिकन हैं, अर्थात मूर्ति पूजक नहीं किंतु मूर्ति भंजक हैं। झट मंदिर तोड़ दिया। जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि 18 करोड़ के रत्न निकले। तब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तो रोने लगे, कहा कि कोष बतलाओ, मार के मारे झट बतला दिया। तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को गुलाम भिखारी बना, पिसना पिसवाना, घास खुदवाया, मल मूत्र आदि उठवाया और चना खाने को दिए। हाय, क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए, क्यों परमेश्वर की भक्ति ना की। जो मलेच्छों के दांत तोड़ डालते और अपना विजय करते, देखो जितनी मूर्तियां हैं उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की, परंतु मूर्ति एक भी उनके सिर पर उड़के ना लगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता।
द्वारिका जी के रणछोड़ जी, जिसने नरसिम्हिता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी झूठी है?
किसी साहूकार ने रुपये दे दिए होंगे, किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्री कृष्ण ने भेजे हैं। जब संवत 1914 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अरंगियों ने उड़ा दी थी, तब मूर्ति कहाँ थी? प्रत्युत्तर, बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े, शत्रुओं को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी ना तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो उनके धुर्रे उड़ा देता और ये भागते फिरते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाए उसके शरणागत क्यों पिटे जाएं?
ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है और सबको खा जाती है, और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती है और आधा छोड़ देती है। मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई और लोहे के तवे जड़वाए थे, तो भी ज्वाला न बुझ सकी और न रुक सकी। वैसे हिंगलराज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती हैं, पहाड़ को गर्जना कराती है, चंद्रकूप बोलता और योनि तंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठुमरा बांधने से पूरा महापुरुष कहलाता है। जब तक हिंगलाज न हो आवे तब तक आधा महापुरुष बनता है, इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं है?
नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगे निकलती है, उसमें पुजारी लोगों की विचित्र लीला है। जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती है, अलग करने से व फूक मारने से बुझ जाती है और थोड़ा सा घी को खा जाती है, शेष छोड़ जाती है, उसी के समान वहाँ भी है। जैसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाए सब भस्म हो जाता है, जंगल व घर में लग जाने से सबको खा जाती है, इससे वहाँ क्या विशेष है? बिना एक मंदिर कुंड और इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पोप पुजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं। एक जल और दलदल का कुंड बना रखा है जिसके नीचे से बुदबुदे उठते हैं, उसको सफल यात्रा होना मूढ़ मानते हैं। योनि का यंत्र उन लोगों से धन हरने के लिए बनवा रखा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप लीला के हैं। उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद दें तो क्या महापुरुष हो जाएगा? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है।
अमृतसर का तालाब अमृत रूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा और एक भित्ति नमती और गिरती नहीं। रेवाल सर में बेड़े तरते हैं, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते हैं, हिमालय से कबूतर के जोड़े आके सबको दर्शन देकर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं है?
नहीं, उस तालाब का नाम मात्र अमृतसर है। जब कभी जंगल होगा तब उसका जल अच्छा होगा, इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा। जो अमृत होता तो प्राणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता? भित्ति की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती होगी, रीठे कलम के पैबंद होंगे अथवा गपोड़ा होगा, रेवाल सर में बेड़ा तैरने से कुछ कारीगरी होगी, अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है, और कबूतर के जोड़े पालित होंगे, पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे, दिखलाकर टका हरते होंगे।
हरिद्वार स्वर्ग का द्वार, हर की पैड़ी में स्नान करें तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता है। देवप्रयाग, गंगोत्री में गोमुख, उत्तर काशी में गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्री नारायण की पूजा 6 महीने तक मनुष्य और 6 महीने तक देवता करते हैं। महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुंगनाथ में जानू और पग अमरनाथ में, इनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है। वहाँ केदार और बद्री से स्वर्ग जाना चाहें तो जा सकते हैं, इत्यादि बातें कैसी हैं?
हरिद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरंभ है। हर की पैड़ी एक स्नान के लिए कुंड की सीढ़ियों का बनाया है। सच पूछो तो हाड़ पैड़ी है, क्योंकि देश देशांतर के मृतकों के हाड़ उसमें पड़ा करते हैं। पाप कभी नहीं छूट सकता, बिना भोगे अथवा नहीं कटते। तपोवन जब होगा, अभी तो भिक्षुक वन है। तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता, किंतु